आस्तिक ने अरुणिमा को फंसा दिया था और अब जे आर्टिस्ट ने बनाया था वो अरुणिमा से पेंटिंग के बारे में पूछ रहा था। अरुणिमा एकदम से हैरान हो जाती है। उसने पहले तो गुस्से में आस्तिक को देखा, जिसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, और उसने अरुणिमा को देखकर एक आंख मार दी, जैसे कि अरुणिमा की हालत पर उसे मजा आ रहा हो। लेकिन एंटोनियो के चेहरे पर एक चमक थी। उसने अरुणिमा से कहा, बताइए मैडम, पेंटिंग में आपको क्या नजर आया है, ताकि मैं इसकी पेंटिंग की गहराई को और अच्छे से समझ सकूं। अरुणिमा ने एक नज़र उस पेंटिंग को देखा। उसे सच में इस पेंटिंग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ग्रीन कलर में रेड कलर का हाउस उसे कहीं से भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। पर तभी उसे अपने पिता की कही हुई एक बात याद आ गई कि कला को समझने के लिए आंखों की नहीं मन की जरूरत होती है, और जब मन की आंखों से किसी चीज को देखा जाता है तो उसे देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। अरुणिमा ने बहुत गौर से उस तस्वीर को देखा, लेकिन इस बार अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने मन से। इसके बारे में सोचते हुए उसका चेहरा एकदम से भावहीन हो गया और उसने उस तस्वीर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, एंटोनियो जी, ये तस्वीर सच में काबिल-ए-तारीफ है। जहां पर आपने दिखाया है कि कैसे इतने बड़े विशाल जंगल में एक घर अकेले जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, ये जानते हुए भी कि वहां उसके आसपास और कोई घर नहीं है, जैसे कि एक इंसान जो रहता तो लोगों के बीच में है लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से अकेला रहता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक उम्मीद रहती है कि कोई उसके इस अकेलेपन को समझेगा। आपने इस जंगल के बीच में ये अकेला घर इसीलिए बनाया है ताकि इसके लाल रंग से ये महसूस हो सके कि इस घर के अंदर भी जीने की चाहत जिंदा है। एंटोनियो की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और आस्तिक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आर्टिस्ट एंटोनियो ने अपने दोनों हाथों से तालियां बजानी शुरू कर दी और एग्जीबिशन में सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। आर्टिस्ट एंटोनियो की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने चश्मे को हटाकर आंसू पोंछते हुए कहा, क्या बात है मैडम, इतनी गहराई से आपने इस पेंटिंग की असली भावना को समझ लिया। मैं आप जैसे लोगों की सराहना करता हूँ। सच में आपने इस पेंटिंग की गहराई को बहुत अच्छे से समझा है। मैंने इस पेंटिंग को बनाया ही इसीलिए है ताकि ऐसे लोगों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने में आसानी हो जो लोगों के बीच में रहते हैं लेकिन अकेले रहते हैं। अरुणिमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसने आस्तिक की तरफ देखा, जिसे गर्व भरी मुस्कान के साथ अपना हाथ उठाकर अरुणिमा को गुड जॉब के लिए अपने हाथ का अंगूठा दिखाकर उसकी सराहना की। आर्टिस्ट एंटोनियो ने उस पेंटिंग को उतारा और अरुणिमा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैडम, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। अरुणिमा एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी कीमत देखी थी, जिसकी कीमत करीब 5.5 लाख रुपए थी। इस एक पेंटिंग को एंटोनियो उसे ऐसे ही गिफ्ट में दे रहा था। उसने जल्दी से नामे सिर हिलाते हुए कहा, जी नहीं, आप मुझे इसे ऐसे नहीं दे सकते हैं, ये तो बहुत महंगी पेंटिंग है, मैं इसकी कीमत दूंगी। लेकिन आर्टिस्ट ने जल्दी से अरुणिमा को रोकते हुए कहा, नहीं मैडम, मुझे इसकी कीमत नहीं चाहिए। इसकी कीमत का अंदाजा तो मैं आपके शब्दों से भी नहीं लगा सकता हूँ। जो आपने मेरी पेंटिंग की गहराई को समझा है उसके लिए ये कीमत बहुत कम है, इसीलिए मैं इसे आपको तोहफे के रूप में देना चाहता हूँ। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक की तरफ देखती है, जो आंखें झटक कर हाँ में सिर हिलाता है। अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए उस पेंटिंग को ले लिया और एक कर्मचारी को दे दिया ताकि वो उसे पैक कर सके। तभी मैनेजर ने आस्तिक के कानों में कुछ कहा। आस्तिक ने तुरंत अरुणिमा की तरफ देखते हुए बोला, अरुणिमा, तुम थोड़ी देर एग्जीबिशन का मजा लो, मुझे मैनेजर के साथ कुछ बात करनी है। कहाँ जा रहे हो, अरुणिमा ने तुरंत कहा, तो आस्तिक ने उसके चेहरे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए उससे बोला, कहीं नहीं, बस यहीं हॉल के बाहर ही हूँ, कुछ जरूरी बात है, यहाँ नहीं हो सकती। तुम तब तक बाकी की पेंटिंग्स देखो, कोई और पेंटिंग पसंद आए तो तुम उसे खरीद सकती हो। अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और आस्तिक मैनेजर के साथ उस एग्जीबिशन के बाहर पहुंच जाता है, जहां पर पहले से ही एक आदमी मौजूद था। उसने आस्तिक को देखकर उसे हेलो कहा और फिर एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये रहा आपका ऑर्डर। वैसे मानना पड़ेगा आपकी पसंद काबिल-ए-तारीफ है, हमें भी आपके लिए ऐसा यूनिक पीस बनाने में बहुत खुशी हुई। आस्तिक ने उस आदमी के हाथों से वो पैकेट लिया और उसके अंदर से वो सामान निकालकर देखा, जिसे देखकर उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो जाती है। उसने बॉक्स बंद किया और उन लोगों को थैंक यू कहा। वो आदमी वहां से चला गया। उसके बाद मैनेजर कहते हैं, वैसे सर, आपने अच्छा दिन चुना है, मैडम काफी खुश नजर आ रही हैं। आस्तिक ने एक बार और अपने मंगवाए हुए सामान को देखा और उसे अपनी पॉकेट में डालते हुए कहा, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था, फाइनली वो दिन आ गया। थैंक यू मैनेजर साहब मेरी मदद करने के लिए, वरना मैं इसके लिए प्लानिंग करता रह जाता। आस्तिक वापस एग्जीबिशन हॉल में आता है और अरुणिमा को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अरुणिमा कहीं नजर नहीं आ रही थी। ये देखकर वो एकदम से घबरा जाता है। उसने आर्टिस्ट एंटोनियो को कुछ और लोगों के साथ किसी दूसरी पेंटिंग के पास देखा, लेकिन अरुणिमा वहां नहीं थी। आस्तिक का दिल एकदम से घबरा गया जब उसने अरुणिमा को हॉल में नहीं पाया। वो बेचैन होकर अरुणिमा को देखने लगा। उसके दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि कहीं इसके पीछे आरुषि का हाथ तो नहीं है। वो एकदम से घबरा गया। उसने तुरंत हॉल की तरफ कदम बढ़ाए और बेचैन होते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है। वो तुरंत घबरा कर पीछे देखता है और अपने सामने अरुणिमा को देखकर वो जल्दी से उसे गले लगा लेता है। अरुणिमा उसके चेहरे पर डर देखकर खुद घबरा गई थी, और जब आस्तिक ने उसे अपने सीने से लगाया तो वो एक पल के लिए चौंक जाती है। आस्तिक उसे अलग करता है और बेचैन निगाहों से देखते हुए कहता है, कहाँ चली गई थी तुम? मुझे बिना बताए कहाँ गायब हो गई थी? अरुणिमा उसकी घबराहट देखते हुए तुरंत बोली, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो गए? मैं वॉशरूम चली गई थी। अरे, तुमने मुझे आर्टिस्ट एंटोनियो के साथ अकेला छोड़ दिया था और वो मुझे अपनी बाकी पेंटिंग्स के बारे में पूछने लगा था। मैं इतनी घबरा गई कि मुझे वॉशरूम जाना पड़ा। सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया क्या? आस्तिक ने आंखें बंद की और गहरी सांस छोड़ते हुए अरुणिमा से कहा, मुझे बिना बताए कहीं भी गायब मत हुआ करो, तुम जानती हो ना मैं घबरा जाता हूँ। अरुणिमा उसके चेहरे पर डर देख रही थी। उसने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो सूर्य ही था ना, वही बार बार मुझे नुकसान पहुंचाता था, लेकिन अब तो वो मर चुका है तो अब हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और सॉरी, मैं तुम्हें बिना बताए ऐसे गायब हो गई थी, अगली बार मैं कहीं भी जाऊंगी तो तुम्हें बताकर जाऊंगी। अरुणिमा ये कहकर मुस्कुरा देती है। आस्तिक ने उसे एक हाथ से अपने सीने से लगाया और दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए अपने मन में कहा, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं अरुणिमा कि सूर्य तो सिर्फ एक मोहरा था, असली दुश्मन तो तुम्हारी बहन है। अरुणिमा उसके सीने से लगी हुई थी और वो आस्तिक की बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस कर सकती थी। आस्तिक के अचानक से ना मिलने पर वो इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई थी। उसने हैरानी से आस्तिक को देखा, पर तभी वहां पर मैनेजर स्टेज पर खड़ा हो जाता है और माइक पर अनाउंस करते हुए कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है और आस्तिक और अरुणिमा भी उसे ही देखने लगते हैं। आस्तिक अरुणिमा का हाथ पकड़कर उसे स्टेज की तरफ लाने लगता है और मैनेजर साहब सबको देखकर माइक पर कहते हैं, इस एग्जीबिशन में अब एक खास अनाउंसमेंट होने वाली है जो करेंगे हमारे ट्रस्टी साहब मिस्टर आस्तिक रायचंद।